निरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो निरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातर्वोऽभिनेतुं तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्तास्तु कामामितं कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि बार श्रद्धा दंडवत प्रण पुष्पांजलि किया। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में षष्टम दंडवत प्रण किया। कल हमने प्रेमी भक्त हनुमान जी का चरित्र सुना, उसके पहले हमने सकाम भक्त भक्ति नहीं रोजी का चरित्र और उसके बाद में ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज जी का और इसके बाद में शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज जी का चरित्र संक्षेप में सुनाया। कल हमने प्रेमी भक्त हनुमान जी का सुना, आज हम प्रेम पर भक्त के संबंध में बताएंगे। पहले हुआ ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त और प्रेम पर भक्त और इसके बाद प्रेमातुर भक्त, ये उद्धव जी होंगे और उसके बाद में भक्त नहीं राधा कृष्ण के परिकर गोपियां वो भक्तों में नहीं है, कृष्ण ही है स्वयं राधा जी। ये सब तात्पर्य बतला रहा हूं, इनको जान करके उन कथाओं को सुन करके किसी न किसी एक में लोभ हो सकता है जीव का और जब लोभ होगा तो यही राधा जी का भक्ति जो कोटि कोटि जन्मों के सुकृति से नहीं मिलती वो चित में लोग हो। आज हम प्रेम पर भक्त पांडवों की कुछ कथा बतला रहे हैं। एक समय नारद जी शंकर जी के पास में गए, बोले जी प्रभु आप तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस समय में कोई स्पेशल भक्त, विशेष भक्त को का नाम बतलाइए, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। और भक्त की दर्शन करने की इच्छा है तो अभी इंद्रप्रस्थ में चले जाओ और वहां जाकर के अर्जुन के राजभवन में जाए और वहां देख। ये कृष्ण कृष्ण बिना पर बजाते हुए वहां पर पहुंचे इंद्रप्रस्थ में, और अर्जुन का घर मालूम था, प्रहरी इनको कहीं नहीं रोकते, सब जगह इनकी आबाद गति है। उनके महल में भीतर पहुंच गए और देखा क्या अद्भुत अद्भुत दृश्य देखा। एक पलंग है, उस पर कृष्ण सोए हैं, सिरहाना उनका एक तरफ है और पैर एक तरफ, और अर्जुन भी उसी पलंग के ऊपर में सोए हैं। जिधर कृष्ण का सिर है उनके पीठ पर अर्जुन का पैर होता हुआ उधर चला गया है, उसको सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि रानियां दबा रही हैं, और उधर में कृष्ण अर्जुन के ऊपर से अपना पैर ले गए हैं और उसको द्रौपदी इत्यादि रानियां, और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा। कैसे हरिहर एक आत्मा जैसे एक ही पलंग पर कृष्ण सोए हैं और उनके छाती के ऊपर से अर्जुन का पैर जा रहा है। ये साधारण बात हनुमान जी कर रहे हैं ना, भरत जी करेंगे, भरत जी तो इतने बड़े हैं ना, प्रेम के अगाध समुद्र है, किंतु भरत जी भी नहीं करेंगे, लक्ष्मण जी इतनी सेवा करने वाले हैं वो भी नहीं करेंगे। देख करके आश्चर्यचकित होकर के और अर्जुन का गुणगान कर, तो ऐसे प्रेमी भक्त हैं। यही नहीं, भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक संबंधानुगा होती है और एक कामानुगा होती है। कृष्ण से कोई संबंध होना चाहिए तो उसमें प्रीति प्रगाढ़ होती है। कुंती जी वसुदेव जी की बहन थी, पांडु से प्यारी थी, और उनके पुत्र हैं ये पांच पांडव। तो कृष्ण की ये बुआ लगती थी खास अपनी बुआ, तो ये रक्त का संबंध हुआ ना, इसलिए कृष्ण उनके ममेरे भाई लगते थे, भाई लगते थे, इसलिए उनमें कितना प्रेम होगा समझो। हनुमान जी उनके दास हैं किंतु ब्लड रिलेशन नहीं है, और कृष्ण को आलिंगन करने की तो बात ही रहे, कृष्ण के छाती पर पैर रख लेंगे क्या मजा, नहीं रह सकते। तो कृष्ण के साथ में इनका संबंध है, कृष्ण के ये बुआ के लड़के भाई लगते। देखो और भी एक संबंध कृष्ण ने जानबूझ करके कर लिया। कौरव और पांडव, पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। बलदेव जी ने भीम को भी गदा सिखाई थी, गदा जी, किंतु दुर्योधन को कुछ अधिक सिखलाई थी, अधिक सिखलाई थी। भीम में बल अधिक था और इसमें फूर्ति अधिक थी दुर्योधन में, न जाने क्यों किसी का ऐसा स्वभाव होता है, दुर्योधन पर उनकी प्रीति कुछ अधिक थी। और कृष्ण के प्रति कहां थी? पांडवों में, विशेष करके अर्जुन में थी। तो जब इन दोनों की बहन सुभद्रा जी विवाह के योग्य हुई, बड़ी योग्य थी, विवाह योग्य हुई, तो बलदेव जी की कुछ इच्छा ऐसी थी कि दुर्योधन के साथ में उसकी शादी, क्योंकि दुर्योधन बड़ा कूटनीतिज्ञ था, उसके मंत्री कर्ण और शकुनी और दुर्शासन ये तीन थे। कर्ण भी वैसे ही और शकुनी बदमाश नंबर अव्वल नंबर एक और दुर्शासन भी वैसे ही। तीनों ने परामर्श दिया कि देखो किसी तरह से बलदेव जी तुमको बड़ा प्यार करते हैं। तो बलदेव जी के चरण पकड़ करके कान्हा जी उनकी बहन की शादी हम तुमसे कर दें, तो जादुओं से संबंध हो जाएगा तो पांडवों से एक दिन युद्ध होगा ही, ये निश्चित है। तब उनकी सारी सेनाएं हमारे तरफ में आ जाएगी और हम लोग जीत जाएंगे और बलदेव प्रभु जी हमारे तरफ में भी आ जाएंगे। तो इस नीति से वो चल रहा था। बलदेव जी जानते थे जो हमारी बहन की शादी वो करना चाहता था, वो भी तो राजकुमार था, धृष्टराष्ट्र के बाद में राजा आधा का तो होगा ही, कोई हर्ज नहीं। और इधर कृष्ण क्या चाहते थे? दुर्योधन का नाम गंध भी नहीं सुनना चाहते, और देवकी वसुदेव और उग्रसेन सारा परिवार यह नहीं चाहता था जो दुर्योधन के साथ उसके साथ।
तो नहीं चाहती
थी। तो कृष्ण से परामर्श करके अर्जुन ने एक नाटक किया, नाटक नहीं बल्कि वो सुभद्रा जी से शादी करने के लिए एक कौशल किया। वो सन्यासी बन गए हम लोगों जैसा त्रिदंडी, सन्यास का दंड ले लिया। तो हम लोग तो ये सब पहने, वो कुछ नहीं, बस दंड कॉपी लेकर के, दंड लेकर के, और द्वारकापुरी में गए। ऐसा वेश बदला जो कोई समझ नहीं सका, केवल कृष्ण समझ रहे हैं और कोई भी नहीं समझा। वो समुद्र के किनारे, द्वारका में समुद्र है, उसके किनारे बैठ गए, एक छोटी सी झोपड़ी बना ली घास की फूस की, और वहीं पर ध्यान करने लगे। देखने में तो अपूर्व सुंदर थे कृष्ण जैसे ही, गुणी भी थे, रूपवान भी थे। अब द्वारकापुरी के सब लोग उनका दर्शन करने के लिए जाने लगे। पहले तो कृष्ण गए और सबसे बोले कि यहां पर एक बड़ा भारी सन्यासी आया है, उसका दर्शन करने से मनोरथ सफल हो जाते हैं। सब वहां के जितने विशेष करके स्त्रियां जल्दी जाती हैं, वो उनका दर्शन करने के लिए गई। सब लोग जाने लगे तो अर्जुन भी वैसे ही बने। किंतु देखो अर्जुन काम विजयी थे, साधारण नहीं थे, इंद्रियों पर विजय करने वाले अपने थे। स्वर्ग में गए तो उर्वशी ने उससे विवाह करना चाहा, कहे तुम तो हमारे कुल की मैया है, हम तुमको मैया ही जानते हैं, मैया ही जानेंगे, इसलिए तुम्हारी तरफ में देखा कि हमारे कुल की ये मैया है, इसलिए मैं प्रणाम करते हुए तुमको देखा था। तो नहीं, तुमने यहाँ स्वर्ग में कोई मैया तैया नहीं है, हमसे तुम विवाह करो, तो जाओ तुम नपुंसक हो जाओ। वो ले लिया किंतु मैया के बात से नहीं डिगे नहीं। ऐसे ही कितने उदाहरण उनके थे, उत्तरा को उन्होंने पढ़ाया, नृत्य सिखलाया, गान सिखलाया, प्रवीण कर दिया, और जब उन उत्तरा के पिता को मालूम पड़ा, अरे ये तो पांचों पांडव है, ये अर्जुन ने सिखलाया, तो न जी हमारी बेटी को मैं समर्पण करता हूं, आप उसे विवाह कर, नहीं हमने उसे बेटी मान करके उसको इतना दिन पढ़ाया है, सिखलाया है, हाँ अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए उसका हम वर्ण करते हैं, तो कैसे दिग्विजय। और ये थे तो वहां पर बैठ करके जमा लिया, सब लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यहां तक कि बलदेव भी गए दर्शन करने के लिए, उनको दर्शन किया, प्रणाम किया, प्रणाम करके आए और अपनी बहन से कहा, सुभद्रा अपने अच्छे पति के लिए जाओ, उससे वर मांग लाओ। उन्होंने कहा, और तब ये सज धज कर और वहां पर गई और उनको प्रणाम करने के लिए, और इतने में कृष्ण का इशारा कुछ पाया, रथ वहां पर खड़ा था, उत्तरा रथ में, उत्तरा ने क्या सुभद्रा जी रथ में चढ़ करके उस सन्यासी का दर्शन करने के लिए गई थी। तो जब ही वो पूजा की वहां पर गई, प्रणाम किया, तो कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके अपने रथ पर बिठला और घोड़े की लगाम उसके हाथ में दे, और अर्जुन धनुष बाण लेकर के खड़ा हो गया, दंड छोड़ दिया और सुभद्रा रथ को चलाने लगी। बलदेव जी को पता चला जैसे वो तो सुभद्रा का हरण कर लिया, हमारे वंश में आकर के घर में आकर के सुभद्रा का हरण ले जाते थे, हल मुसल लेकर के अपनी सेनाओं को कहा जैसे चलो उसे पकड़ करके उसे मार डालना है। जब चले तो कृष्ण ने पूछा कि भैया कहां जा रहे हो, तो सुना नहीं हमारी बहन को, अर्जुन वो त्रिदंडी सन्यासी नहीं था, वो तो अर्जुन था, उसका अपहरण करके ले गया, तो इसमें हर्ज क्या हुआ, आप मैंने भी तो किसका रुक्मिणी का हरण किया और आपने हमारे तरफ से लड़ा, तो ये वीर क्षत्रियों का तो ऐसा ही होता है, और वो भी हमारा पुत्र शाम दुर्योधन की लड़की को लेकर के आ रहा था, तो आप क्यों गए उसकी रक्षा करने के लिए, तो यह भी किया, तो इसमें क्या बात है। अच्छा देखो रथ कौन चला रहा है, सुभद्रा चला रही है, तो इसका मतलब जैसे सुभद्रा अर्जुन को हरण करके ले जा रही है, तो तुम क्या चाहते हो, अब तो समझ गए जो सुभद्रा ने जानबूझ करके पति के रूप में उसका वर्ण कर लिया, तब उसके पति को मार करके क्या अपनी बहन को विधवा बनाना चाहते हो, तो जाओ लड़ो। तो बलदेव जी बोले जी तो पहले हमको क्यों नहीं बतलाया, तुम लोगों की ऐसी बात है तो परिवार वाले तुमसे डरते हैं ना, इसलिए कहा नहीं, तो अब क्या करना चाहिए, तो अब जाओ अर्जुन को और सुभद्रा को बुला लाओ प्रेम से, और यहीं पर धूमधाम से शादी कराओ, कन्या का दान पिताजी माताजी करें और हम लोग उसमें सम्मिलित। शादी हुआ, गए कर जैसे अब युद्ध की जरूरत नहीं है, तुम दोनों लौट आओ, और दोनों को घर में ले गए, वहां पर धूमधाम से शादी हुई और अर्जुन की विदाई हुई। इस तरह से कृष्ण ने जानबूझ करके कृष्ण अर्जुन से नाता जोड़ा, इसको संबंधात्मक भक्ति कहते हैं। हम लोग भी कृष्ण से संबंध करना चाहते हैं, इसलिए मन ही मन में ऐसा कोई संबंध हो उनसे कर, कृष्ण से संबंध हो। गुरु इस चीज को बतलाते हैं कि कैसे संबंध होता है, संबंध पहले मन से ही होता है, शरीर से पीछे होता है, इसलिए मन से आत्मा से कृष्ण के साथ में हम लोगों का संबंध कृष्ण से। ये तो हुआ अर्जुन से कृष्ण का संबंध। देखो महाभारत युद्ध हुआ, आरंभ हुआ, दुर्योधन पहले पहुंचा कृष्ण के पास द्वारका में, और उसके पास में अर्जुन पहुंचे जे कृष्ण हमारे साथ में युद्ध में चलिए, हमारे तरफ से लड़े। सबके यहां लोग गए तो कृष्ण के पास में गए, कृष्ण सो रहे थे। दुर्योधन आगे गया और देखा जैसे कृष्ण से हम छोटे थोड़े हैं, इसलिए पैर की तरफ नहीं बढ़ करके सिर की तरफ में बैठा। इसके बाद में अर्जुन आए, देखा जी दुर्योधन बैठा है पहले से, मुझे अच्छा हुआ जो सिर की तरफ में बैठा, ये पैर की तरफ में बैठे। जब ये बैठ गए तो थोड़ी देर के बाद में कृष्ण उठे, उठ करके सामने देखा अर्जुन को, उनको पीछे नहीं देखा। अर्जुन क्या बात है, कैसे आए? अरे नहीं नहीं मैं पहले आया हूँ दुर्योधन। किस लिए आए हैं? पीछे मुड़ करके देखा, मैं कि पांडवों से हम लोगों का युद्ध होगा, इसलिए आप हमारी तरफ से युद्ध करें। ओ तुम पहले आते तो ठीक है, पहले आए तो एक बार करना, तुम क्या चाहते हो? एक तरफ में हमारी सेनाएं हैं, पूरी सेना, नारायणी सेना जो कभी हारती नहीं है किसी से, कृतवर्मा उसका सेनापति, और दूसरी तरफ में मैं हूं, और बलदेव जी के पास में दुर्योधन गया, का हम किसी से नहीं लड़ेंगे, किसी के तरफ में नहीं रहे, हम तब चुपचाप हैं। और कृष्ण ने कहा एक तरफ में नारायणी सेना है, उसको ले लो, वो लड़ेगी, और मैं मुझको यदि लाए तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं चुपचाप रहूंगा, जिसको लेना है ले लो। तो उसने कहा नारायणी सेना ही हमको चाहिए, आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो लड़ेंगे नहीं। अर्जुन रोने लगे, बोले जे प्रभु आपने उसको अच्छी तरह से ठग दिया, मुझे आपकी सेना की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है, आप हमारे मन के रथ के ऊपर में बैठे रहेंगे केवल, कुछ नहीं करना। कृष्ण गदगद हो गए। देखो किसी की जरूरत नहीं, किसकी जरूरत है? कृष्ण की सेवा की जरूरत है, कृष्ण के प्रति प्रेम हो इसकी जरूरत है। तो कृष्ण अर्जुन के तरफ में गए, किंतु किया क्या? अर्जुन का घोड़ा खोया, अर्जुन के नौकर बन गए, और सब प्रकार से उनको जब जब जरूरत होती उनको परामर्श देते, फिर धनुष रख दिया तो उसको उत्साह देकर के फिर से लगाया युद्ध में। इस तरह से सब समय अर्जुन का भला किया। यही नहीं, किसी समय में युद्ध से पहले अर्जुन कृष्ण कहीं जा रहे थे तो एक नदी के किनारे जमुना में निकट में पहुंचे। कृष्ण ने कहा जमुना निकट है, वहां से पानी लाओ। तो अर्जुन उतर करके पानी लाने के लिए गए तो इतने में एक बंदर को वहां देखा। वो बंदर कौन था? हनुमान जी थे। तो परस्पर कुछ बातचीत हुई, मुझे पूरी याद नहीं।
अर्जुन ने बताया रामलीला में राम क्या बोला बंदर से?
उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप कहते हैं कि राम भगवान थे, बड़े बलवान थे, तो उन्होंने धनुष बाण से पुल क्यों नहीं बांध दिया?
बंदरों को लगाया काम में।
और बंदरों को लगाया, आप लोग सब लोग मिलकर के कितने लाख बंदर उस पुल को बांधा, तो बड़ी मुश्किल से पार हुए। मैं रहता तो बाणों से एक सेकंड के अंदर मैं पुल बांध देता। तो हनुमान जी ने कहा जो तुम्हारा बाण का कुल हमारी भार एक एक लोहे का भी भार नहीं सह सकता। राजा अच्छा तो देख लो, और देखते देखते अर्जुन ने बाणों से ऐसा मजबूत जमुना के ऊपर में कुल बांध दिया। हनुमान जी डर गए, ये तो बड़ा कुल मजबूत बनाया है, इसलिए बहुत विराट विशाल रूप धारण करके लोम लोम में पर्वत बांध करके विराट रूप धारण किया और लौटे। अर्जुन ने देखा कि ये तो पुल धस जाएगा, तो उसने मनी मनी में कृष्ण को पुकारना रहे प्रभु हमारे रक्षा के लिए, और हनुमान जी देख रहे हैं राम को स्मरण कर रहे हैं पुल को जरूर टूटना चाहिए। उस समय में हनुमान जी ने एक पैर उठा करके और उस पर रखा, और इस पैर का भार भी धीरे धीरे उस पर देना आरंभ किया, किंतु पुल एकदम नहीं टूटा। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं पृथ्वी का भार दे करके और इस पुल पर पैर रख रहा हूं, अभी तक नहीं टूटा नहीं। तो इस पैर को उठाना चाहा दूसरे को और दूसरे को भी रखे, इतने में देखा रक्त की धारा बह रही है, खुद करके नीचे आ गए और नीचे देखा तो राम अपनी पीठ लगाए हुए हैं और उनके मुख से रक्त निकल रहा है, और अर्जुन ने देखा कृष्ण ने पीठ लगाया है उनके यहां से रक्त। दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, स्वयं उन्होंने देखा अपने इष्ट देव को उन्होंने देखा, फिर जबकि दोनों वहां पर खड़े हुए तो कृष्ण प्रकट हुए और बोले हनुमान को जो देखो मैं ही राम हूं, मैं राम होकर के अभी कृष्ण बन करके अभी अर्जुन की मैं सेवा कर रहा हूं, तुम भी इनकी सेवा तुमको करना पड़ेगा, तुम इनके ध्वजा पर रहना और जब कोई आफत आए तो इसको बचा देगा, गर्जन करना जे वो उनका तीर गड़बड़ हो जाए। इसलिए कभी कभी जब ऐसा जब कर्ण ने बाण छोड़ा तक्षक का जो अर्जुन के रथ को निगल जाएगा, तो उन्होंने बड़ी गर्जना के साथ में रथ को दबा दिया नीचे और वो ऊपर से चला गया, कुछ नहीं किया, फिर उठा करके ऊपर रख दिया। तो कर्ण ने कहा जैसे वो कैसे बच गया, तो उसने कहा जी इस बार फिर चलाओ, इस बार जरूर छोड़ेंगे नहीं, कहिए आप नहीं दूसरी बार। ऐसे ही जब जब भीड़ पड़ी उनकी रक्षा की हनुमान जी, अपने सेवक बने और हनुमान जी को सेवक, और इस तरह से महाभारत के युद्ध में भूमि भार हरण करके सब क्षत्रियों को जो दैत्य दानव जैसे थे मार करके पृथ्वी का भार हरण किया, अर्जुन उसकी भुजा के रूप में। कीर्तन, इसलिए अर्जुन की पांडवों की भक्ति को प्रेम पराभक्ति, प्रेम पर भक्ति का अपना रिलेटिव है।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जय श्री राधे, हरि से बरा हरि गाना, हरि से
प्रभु से बड़ा प्रभु खाना, बचानो
हनुमान उसी को
जाएंगे जिनमें नहीं है नाम तेरा तेरा से होने वाले डूब जाएंगे तेरा तेरा से होने वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम तेरा तेरा से होने वाले वो पत्थर भी करेंगे जिन पर वो पत्थर भी हाँ वो पत्थर भी करेंगे जिन पर वो पत्थर भी लिखा राम का नाम हरी से बड़ा हरी का नाम हरी से अंत में
Thank you.
इसमें राधा रसाभास दोष ये है कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद जी बड़े भैया हैं महाप्रभु जी के, उनके सामने में राधा गोविंद जी, क्या वो कीर्तन है, हरे कृष्ण है, तो हरे कृष्ण राधा कृष्ण है और हरे राम हरे से राधा जी जो कृष्ण के मन को भी हरण कर लेती है और राम राधा के साथ में जो रमण करते हैं वो यहाँ पर राम है। तो जहाँ राधा कृष्ण रहेंगे बड़े भैया बलदेव जी या नित्यानंद जी नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं ना, जहाँ पर बड़े भाई के साथ में छोटा भाई हो तो उसकी पत्नी उसके सामने नहीं आएगी, दूर रही, इसीलिए ये है। और एक भी कीर्तन है निताई गौर राधेश, उसमें भी यही दोष। तो इन रसा भाषणों को भक्त लोग नहीं करते। अब हम चलें कथा पर, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये तो अर्जुन और पांडवों के साथ में हमने बतलाया। द्रौपदी जी यद्यपि अर्जुन की जीती हुई स्वयंवर में मूल रूप में इन्हीं की पत्नी है, तभी पांचों पांडवों की भी पत्नी है, क्योंकि कुंती जी ने ऐसा मांग लिया जैसे जाओ बांट करके खाओ, पांडवों ने उसको मिथ्या नहीं होने दिया। तो कृष्ण के प्रति द्रौपदी के प्रति कृष्ण की भावना कैसी है, उसे सखी कहती थी, सब समय सखी, और उसका सम्मान अपनी बहन सुभद्रा से भी अधिक देती थी। एक तरह से द्रौपदी जी की सुभद्रा जी सौंत है ना, एक जगह रहना बड़ा कठिन है, तो कृष्ण ने समझा करके, और दोनों समझदार हैं, विवाह के बाद ही में यह सोच रही है, वो तो आ गई घर में, अर्जुन ने विवाह किया उडुपी उडुपी मणिपुर में भगवान की मैया उडुपी, किंतु उसको साथ नहीं लाया, उसको वहीं पर रख दिया, किंतु इनसे शादी करके सुभद्रा जी को कृष्ण अर्जुन कृष्ण को लाना पड़ा,
अर्जुन को
अर्जुन डर रहे थे न जाने क्या होगा, वो घुसने देगी कि नहीं वहां, और वो भी चिंता कर रही थी मेरे डर से, उसको तो नहीं लाया किंतु इसको ले आए हैं, किंतु इस समस्या का हल कर दिया खुद सुभद्रा जी। विवाह के बाद ही मैं अकेले उनके घर में गई और उनका चरण छुआ और कहा जी आप हमको आशीर्वाद दीजिए, मैं तुम्हारे शौक नहीं, मैं तुम्हारी दासी बन करके आऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। तो उनका चित्त गदगद हो गया, तो फिर तो अपना सारा प्रेम उनको उड़ेल दिया। मैं तो बड़ा भारी कठिन था, फिर अपनी छोटी सहेली समझ करके सब समय बड़ा प्यार करती थी द्रौपदी। द्रौपदी को माँ ये धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज जुए में हार गए, जानबूझ करके शकुनी कर्ण इत्यादि ने दुर्नीति से युधिष्ठिर को बुलाया और धृतराष्ट्र से कहलवाया कि आप उनको जुआ खेलने के लिए कहेंगे, जानते थे कि ये दुआ ठीक नहीं है, तो धृतराष्ट्र दुर्योधन से इतना आसक्त था, उसमें आसक्ति थी, जो कहता था वो माने। पांडवों को बुलाया, बोले जैसे तुम लोग जुआ खेलो, मैं देखना चाहता हूं इतना अंत बदमाश। जब जुआ खेलने के लिए राजी हुए तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से शकुनी खेलेगा। तो दुर्योधन ने कहा ये नहीं, पांडवों ने कहा ऐसा नहीं, राजा के साथ में राजा, युवराज के साथ में युवराज खेलेगा। तब जब नहीं होने का हुआ तो धृतराष्ट्र ने कहा गया तो क्या बात है भाई, जब वो कहता है तो खेल लो, फिर आदेश दिया, जुआ आरंभ हुआ। द्रौपदी वहां पर राजभवन में थी, रजस वाला थी, किसी को छू नहीं सकती थी, और उस समय में पहले एक दाव तो जिता दिया शकुनी ने, अब फिर इसके बाद में धीरे धीरे छल करके, छल से और उसको हराया, और एक एक करके हारते गए राज्य सब। जब हार गए कहे अब तो कुछ नहीं, अरे तुम्हारे भाई तो भी हैं, उनको दाव पर लगाओ तो ठीक है, भीम को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव, सबको हार गए। भाई का हारने का अधिकार नहीं, जो अपने हार जाए फिर दूसरों को क्या हारेगा, तभी चलाकी से उनकी चलाकी में आ गए। अंत में उन्होंने कहा अब तो कुछ नहीं है, तो नहीं अभी द्रौपदी है, द्रौपदी को भी दाव में लगा। पांचों पांडव कुछ बोलना चाहते, चारों भाई, किंतु बोल नहीं सके। ऐसा मुझे मालूम होता है कि युधिष्ठिर जी ये जानबूझ करके कर रहे थे, कुछ उसमें बात थी पीछे बतलाई। फिर द्रौपदी को भी हार गए, अब तो वो लोग बड़े दांत बाहर करके हंसने लगे सब, विशेष करके कर्ण, शकुनी इत्यादि दूसरा शकुनी। जब हार गए दुर्योधन ने कहा जे जाओ द्रौपदी को पकड़ करके यहां ले आओ, दुशासन को। पहले तो नौकर वहां कोई था,
नौकर को भेजा था,
पहले नौकर मैंने वहीं का अधिकारी को गेट के ऊपर या किसी को ला लाओ। द्रौपदी ने कहा मैं रजस वाला हूं, इस समय में मैं नहीं जा सकती। फिर उसको मार करके फिर भेजा, फिर पूछा जो पहले अपने हार गए तब हम लोगों को हारे हैं, या बिना हारे हुए हम लोगों को हारे हैं। तो पूछने गया तो दुर्योधन ने कहा जिससे कहो जैसे यहां राजसभा में आकर के हमारे सामने बात कर। दुशासन जाकर के उसी रजस्वाला में उसका केश पकड़ करके खींचते खींचते मारा। सब लोग हंस रहे थे, अब तो हमारी जीती हुई नाव करानी है। पांडव लोग हृदय उनका विदीर्ण हो रहा था, कुछ नहीं कर पा रहे, और युधिष्ठिर महाराज उनको चुप कर रहा करा रहे थे। और जब हमारी नौकरानी है, पांच पतियों की स्त्री है, तो ये तो वेश्या है। उस समय भीम उठे मारने के लिए किसी प्रकार से, कहे इसमें नंगी करके हमारे यहाँ पर बैठा दो। बतलाओ पांडव जो विश्व विजयी थे, चैतन्य जने क्या कर रहे थे, और उस समय अंधा धृतराष्ट्र की बुद्धि कैसे, भीष्म पितामह दी द्रोणाचार्य बैठे हैं, किसी ने चू तक नहीं किया, कृपाचार्य कुछ बोलने की तरह नौकर की तरह हमारा खाता है और बोलता है, डांट दिया। भीष्म पितामह जी देखते रह गए, कुछ नहीं बोल सके, नीचे सिर कर दिया, उनके तरफ में देखा किसी ने रक्षा नहीं। अर्जुन उठे, इसके बाद में चीरहरण होने लगा। पहले तो कुछ चेष्टा की, फिर दोनों हाथ छोड़ दिए। 50,000 हाथियों का बल वाला दुशासन खींच रहा है, और वो दोनों हाथों से छोड़ करके मुख से अंचल केवल दबा रखता है और खींचने लग गया। उधर में कृष्ण छटपट कर रहे हैं द्वारका में, आना चाहते हैं आ नहीं रहे। द्रौपदी ने आंचल पर आंचल का भी सहारा, जब उसने छोड़ दिए हा कृष्ण ऐसे दोनों हाथों को उठा लिया, बस अपना जूता लाना भी भूल गए, गरुड़ पर चढ़ना भी भूल गए और एक सेकंड के अंदर में वस्त्र बन गए। और ऐसे वस्त्र भी नहीं, रंग बिरंगे कपड़े, कितने गज के गज निकल लगे और खेलते खेलते हाथ
थक गया,
श्वास फूल गया, नहीं कर योजन से साबर साबर जल्दी खींचो और देखते रह गए वो भी क्या हो गया। उस समय में गंधारी आई, अच्छा क्या हो रहा है, आप अंधे हैं, आप बिल्कुल अंधे हो गए ऊपर और भीतर, क्या ये भीष्म पितामह द्रोण कुछ रोक नहीं सके, इन लोगों को लज्जा नहीं आती है, अभी न जाने क्या प्रलय होगा, बंद करो। वो तो थका हुआ था ही, उस समय द्रौपदी अभिशंपाप देने के लिए हाथ उठाए, जय मैं यदि मैं पतिव्रता हूं और भगवत भक्त हूं। इतने में गंधारी ने उसका मुख रोक लिया, उनके चरण में गिर पड़ी, अब क्षमा करो देवी, तुम जो चाहती हो सब कुछ दे देना, देशासुर जल्दी से इसकी इच्छा पूर्ण। उन्होंने कहा क्या चाहती होगी, तो हमारे पतियों को जो जीत लिया है ये सब कुछ खत्म कर दिया और उनके दास हो गए हैं और हमको हार गए हैं, ये सबको उठा लीजिए और हम लोगों को अपने राज्य में जाने दीजिए। एवं मस्त आशा। तो द्रौपदी की लज्जा कैसे रखी, यदि एकांतिक कोई भक्त होगा द्रौपदी जैसे, यदि पांचों पांडवों की पत्नी थी किंतु कृष्ण के प्रति ही हमारे सखा हैं, ऐसा शुद्ध भाव जिसके वशीभूत अर्जुन के से भी अधिक द्रौपदी के वशीभूत थे, ऐसी ये द्रौपदी थी। पति पति नारियां द्रौपदी का नाम लेती हैं, स्मरण करती हैं, यदि स्त्री हो द्रौपदी के साथ, और कृष्ण का प्यार भी उनके लिए था। जब कृष्ण सुलह कराने के लिए जाने वाले थे हस्तिनापुर में दूत बनकर के शांति दूत, तो द्रौपदी आई, कहे सखा तुम तो जा रहे हो, तुम्हारे जाने से ही तो सुलहनामा हो जाएगा, फिर युद्ध नहीं होगा, तुम्हारे खुले हुए केस का क्या होगा। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रख करके कहा तुमने जो प्रतिज्ञा की वो लाख रूप से वही पूरा होगा और कुछ भी दूसरा नहीं होगा, हमारे जाने से भी कुछ नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा पहले। इस तरह से द्रौपदी के ऊपर में उनकी कितनी करुणा थी। अब एक और सुनाओ, पांचों पांडवों पर कैसी भगवान की कृपा थी। एक समय दुर्वासा ऋषि 60,000 ऋषियों के साथ में पहुंचे हस्तिनापुर में, दुर्योधन ने बहुत आवभगत किया, खूब खिलाया पिलाया और खिलाने पिलाने के बाद में दुर्वासा ने बहुत प्रसन्न हुआ, तुमने बहुत बड़ी भारी मेरी सेवा की, जे प्रभु आपसे एक प्रार्थना है, यदि आप हम पर खुश हो तो हमारे भाई युधिष्ठिर हैं बड़े भैया, आप उनके पास भी जाइए, अभी कामे बन में हैं और 60,000 ऋषियों के साथ में जाएं तीसरे पहर, जबकि उन लोगों का भोजन समाप्त हो जाएगा, तो ये नहीं कहा तीसरे पहर में जाएं। उस समय तक द्रौपदी सब को खिला करके, अतिथियों को खिला करके और अपने भी खा करके बटलोई टोई सब मांझ लेती है, उस समय में जाए। अच्छा ठीक, तुम्हारी प्रार्थना कर सकते, वो नहीं समझे या समझ करके भी ब्रह्मर्षि हैं गए और वहां 3 बजे के करीब शाम के समय जब पहुंचे तब तक पांडव खा करके के विश्राम कर रहे थे और द्रौपदी भी खा पी करके और बटलोही को मांज करके और उल्टा करके रख दिया था। पहुंच करके दुर्योधन महाराज ने बड़ी उनका आदर किया, प्रणाम किया और बोले महर्षि आप बड़े प्रसन्न हमारे ऊपर मैंने जो दर्शन दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं भूखा हूं, अभी तक खाया नहीं हूं कुछ सारा दिन, मेरे लिए कुछ खाने की व्यवस्था करो, तब तक मैं वहां पर एक कुंड है विमला कुंड में स्नान करके आ रहा हूं अपने शिष्यों के साथ में आऊंगा 60,000 शिष्य और वन में कुछ नहीं, द्रौपदी ने खा लिया है, पांचों पांडवों को खिला दिया है, उसके पास में एक सूर्यदेव का दिया हुआ बटलोई थी, पतीला कहते हैं या क्या भोजन बनाने का पात्र, तो उसका बर्था जब तक तुम नहीं खाएगी और इसको मांज करके नहीं रख देगी तब से जो कुछ मांगेगी लाखों लोगों को ये भोजन करा देगी, कम नहीं होगा। द्रौपदी तो खा चुकी थी, बटलोई भी औंधी पड़ी थी और वो कह करके चले गए स्नान करने के लिए। जब स्नान कर रहे हैं उस समय में कृष्ण द्रौपदी जी ने कृष्ण को पुकारा, द्रौपदी की पुकार को सुनकर के भला रह सकते हैं, सुनते ही उपस्थित सखी सखी भूख लगी है मुझे कुछ खिलाओ, अरे इसीलिए तो बुलाया हमारे यहां कुछ खाने को है नहीं और इधर दुर्वासा ऋषि जी आए हैं 60,000 शिष्यों के साथ में और उसको नई भोजन मिलने से हम उन्हें जला करके भस्म कर देगा सबको, इसलिए आपको हमने स्मरण किया, अरे पहले हमको खिलाओ मैं खिला लूंगा तो और कुछ बात सोचूंगा, तो है नहीं है, क्यों नहीं है तुम्हारे पास, कैसे बटलोई लाओ तो देखें। बटलोई मंगाया तो कृष्ण ने बारीकी से देखा उसमें एक सांप का तिनका किसी प्रकार से सटा हुआ था हिंदी में, कृष्ण ने नख से उसे निकाला और मुख में दिया और कहा पानी लाओ और पानी लेकर के पिया और डेकार ना जानते हैं डेकार दिया तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि, इतना कहने के साथ में ऋषि लोग जो स्नान कर रहे थे वहां उनका पेट एकदम तुम्बा हो गया और खाने की जगह नहीं, और कृष्ण ने कहा कि भी गदा लेकर के जाओ तो उनको देरी क्यों हो रही है जल्दी आ जाए भोजन तैयार है। भीम को देखते ही बस वहीं से सब लोग आकाश मार्ग से उड़ करके भागे। अंबरीश को याद आई, अंबरीश महाराज एक बार खेल में पड़ा था चक्र से जलाते जलाते बच गया, फिर वही दुर्दशा न हो, बस वहीं से जो भागे फिर लौटे नहीं। भीम आकर के बोले जैसे वो लोग तो वहां पर देखा ही नहीं है, देखो कितना ये रक्षा करते हैं कृष्ण, कितने बड़े दयालु, विशेष करके पांडवों के जिन लोगों ने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ वो कहते हैं जिसके लिए हमारे लिए जो अपने धन को परिजन को पुत्र को सब को छोड़ दिया। पांडव लोग बचपन से लेकर के कितना दुख सहा, द्रौपदी जी की भक्त है उनकी भला चीरहर होनी चाहिए, किंतु कृष्ण ने सहा किस लिए, जगत में उसकी घोषणा करने के लिए हमारे भक्त लोग ऐसे हैं और मैं उनकी रक्षा करता हूं, डरो मत। इसलिए भगवत भक्त लोग निडर होते हैं, जे जथान माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, जो लोग हमारा जिस रूप में भजन करते हैं मैं बस उनकी प्रतिज्ञा एक जगह झूठी हो गई, वो पीछे बतलाएंगे गोपियों के सामने, सबको जो जो कुछ चाहते हैं दिया, गोपियों के अनुसार में उनका भजन है। तो इस तरह से ये प्रेम पर भक्त हैं, इनसे भी कुछ ऊंचे भक्त हैं, जिनको कहते हैं प्रेम आतुर, प्रेम में आतुर, जिसके प्रेम में कृष्ण भी आतुर हो जाते हैं। ये कल उनके संबंध में जादो और उद्धव जी के संबंध में कल हम बतलाएंगे, आज पर यहीं पर कथा का हम भी सहमत हैं।
बोले श्रृंदावन बिहारी लाल की।
और एक बात पहले दिन हमने कहा था, सबको निमंत्रण दिया था, भाई डरो मत, हम पैसा नहीं मांगेंगे और आरती में भी पैसे देने की जरूरत नहीं, ये कहा था। किंतु भाई आरती में पैसा देना चाहिए, मैंने उसको इसलिए कहा था जैसे उनको डर हो जब आरती में पैसा देना पड़ेगा तो वो भी नहीं देना। तो आप लोग इतने दरिद्र नहीं हो गए हैं जो थोड़ा सा भी पैसा आरती के लिए नहीं, तो फिर परंपरा लग जाएगी, तो पुजारी जी को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा मत करेंगे। जो कुछ आप लोग प्रणामी आरती में देती है देंगी, नहीं तो हमारे जाने के बाद में ये परमा महाराज तो लेते नहीं थे पुजारी जी को, यहाँ पर ठाकुर जी को आरती में पैसे क्यों होते हैं। इसलिए आप लोग यथा योग्य जैसा देना चाहते हैं।
हरे कृष्ण। गुरुदेव कल कुछ भक्तों के अनुरोध से भैया को दीक्षा दिया था, आज उनके परमार्थ नाम घोषणा किया जाएगा। उर्मिला जहर, प्लीज उर्मिला, उर्मिला कौन है?
उर्मिला देवी ही नाम रहेगा, आपका नाम उर्मिला ही रहेगा। ठीक, बैठ।
शकुंतला,
शकुंतला भी नाम अच्छा है।